ओम शांति। कल हमने प्यारे बाप दादा की बहुत ही जीवन को बदलने का सहज तरीका, जिसे हमें अब समय अनुसार अपनाना चाहिए, उस पर महावाक्य सुने। सबके मन में वो महावाक्य फ्रेश हैं, तो बाबा ने कहा हुआ है कि मंथन करने से, ज्ञान का मंथन करने से आप उसको अपना सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं। तो आइए हम कल की मुरली का मंथन करते हैं मिलजुल कर। ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि पहले ये मुरली 30 जनवरी 2010 को चली थी और राजस्थान ग्रुप के आगे ही चली थी। आप में से कौन कौन हैं जो 2010 में ये मुरली सुनने के लिए मधुबन आए थे? कोई हैं? 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 कुछ हैं? तो आपको भी ये मुरली नई ही लगी होगी, और जो नए आए हैं उनके लिए ही बाबा ने इसको रिवाइज किया। तो मुरली का मुख्य विषय था चारों ही सब्जेक्ट्स में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बनकर अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। ज्ञान के हर सब्जेक्ट से एक स्वमान प्राप्त होता है, और उस स्वमान को अनुभव करने से हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। फिर वो हमारे जीवन का, योगी जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप हम बिना बोले, बिना कोई स्पेशल प्रोग्राम बनाए, आगे की धारणा, आगे का योग, आगे के गुणों से संपन्न और नेचुरल सेवा करने लगते हैं। तो आइए इस मुरली को बाबा के शब्दों में सुनते हैं। आज ब्राह्मण संसार के रचेता सब अपने आप को उसी स्वरूप में ले आए जो कल हमने सुना। आज ब्राह्मण संसार के रचेता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं, और हमको तो सामने ही देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। तो बाबा ने हम सबको क्या सर्टिफिकेट दिया कि सारी दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं उनमें हर एक ब्राह्मण बच्चा श्रेष्ठ आत्मा है। क्यों? कि कोटों में कोई है। वैसे भी आप गिनती लगाएंगे तो 850 करोड़ आत्माओं में हम कोटों में कोई है। लेकिन क्या कैसे बने? क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। आज की मुरली में भी यही था जो सुबह सुनी, कि कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, साधारण तन में आए हुए पिता को नहीं पहचानते, तो उनका योग भी नहीं लगता और वो उल्टे नशे में आ जाते हैं। तो इसलिए हमने पहचान लिया, बाप दादा भी दिल से, दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। जिन्होंने बाप को पहचान लिया, दिखने में वो साधारण है बाप भी साधारण तन में है, लेकिन पहचान लिया, इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे मेरे दिल तख्त पर रहते हैं और उनको बाबा दिल का प्यार देते हैं। आप सब जानते हैं कि प्यार भी कई प्रकार का दिया जाता है। एक दिल का प्यार किसी किसी को दिया जाता है। माता पिता के भी तीन चार संतान होंगे, प्यार सबको करेंगे, लेकिन किसी को खास दिल का प्यार करेंगे, जो संतान उनकी क्या होगी, फरमा बरदार, वफादार, आज्ञाकारी, ओबीडियंट होगी, उनका नाम रोशन करने वाली होगी। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल से बाप को, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्मा के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। सारी दुनिया भोगी जीवन वाली है, बाबा के बच्चे योगी जीवन वाले हैं। योगी जीवन ऊंचा ले जाता है, भोगी जीवन नीचे लाता है। योगी जीवन में जमा होता है और भोगी जीवन में खर्च होता है। पैसा जमा करना मुश्किल है, खर्च करना आसान है, लेकिन यहां तो सारे गुण और सारी शक्तियां उनकी खर्च हो रही हैं, बाबा के बच्चों की जमा हो रही है। अब बाबा कहते हैं सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। तो योग लगाने वाले और योगी जीवन वाले में फर्क है, और वही फर्क इस मुरली के द्वारा दूर किया जा रहा है। क्योंकि जीवन दो चार घंटे का नहीं होता, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। अभी आप मुरली मंथन कर रहे हैं तो क्या आप योगी नहीं है क्या? है ना? मुरली मंथन की क्लास में आए तो आते समय आप योगी थे कि नहीं थे? थे। तो योगी मैंने योगी जीवन, उसमें योग लगाना भी एक पार्ट है, लेकिन योग लगाते समय हम योगी नहीं हैं, हम कर्म करते समय भी योगी हैं। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते हुए हम योगी हैं, इसलिए हमारे नाम के साथ क्या लगा हुआ है, कर्म योगी। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन जो सदा योगी होता है, नेचुरल अनुभव करते हो। कोई भी चीज जब तक नेचुरल ना हो सदा नहीं हो सकती। जब नेचुरल हो जाती है तो सदा हो जाती है। जब एक डॉक्टर पढ़ाई करता है तो उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर बन रहा है, लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाता है तो सारी लाइफ के लिए वो डॉक्टर बन जाता है। इसी प्रकार से योगी जीवन हमारा लक्ष्य है कि हम सदा के लिए योगी हो जाए। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं, चमकता हुआ भाग्य की रेखा देखते हैं। जानकी दादी जी ने कल क्या कहा मुरली के बाद, ये कहा कि मैं बाबा को परमात्मा नहीं कहती हूँ, भगवान कहती हूँ, क्योंकि वो भाग्य बनाने वाला है, तो यही बात बाबा ने कही है कि हर बच्चे के मस्तक में बाबा चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। मेरा हर बच्चा सुमानधारी और स्वराज्य अधिकारी है। सुमानधारी और स्वराज्य अधिकारी है, तो हमको सुमान कितने मिले हुए हैं आपको पता है? ये जो बाबा के गुण और शक्तियां हैं, हम उन सब के मास्टर हैं। अगर बाबा सर्वशक्तिवान है तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अगर बाबा ज्ञान के सागर हैं तो हम मास्टर ज्ञान के सागर हैं। बाबा प्रेम के सागर हैं तो हम मास्टर प्रेम के सागर हैं। तो ये हमारे समान हैं और हर सब्जेक्ट का भी अलग अलग समान है। तो बाबा ने कहा हर बच्चा समानधारी और स्वराज्य अधिकारी है। ये स्वराज्य अधिकार कौन से सब्जेक्ट का समान है? कल आपने मुरली सुनी, बाबा ने ज्ञान के सब्जेक्ट का भी समान बताया, योग के सब्जेक्ट का भी समान बताया। तो योग के सब्जेक्ट का क्या समान था? योग के सब्जेक्ट का समान था स्वराज्य अधिकारी, अर्थात अपनी हर इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाला। क्योंकि योग से हमें अपने इंद्रियों पर राज्य, मन पर कंट्रोल आता है। बाबा कहते हैं क्यों कि जहां समान है वहां देह बांध नहीं आ सकता। ये एक बहुत ही स्पेशल मंत्र है जो बाबा ने हमको कल मुरली में दिया। वो मंत्र इतना बढ़िया है कि अगर आप अपने समान में रहेंगे तो आपको देह बांध नहीं आएगा। अर्थात आप 24 घंटे हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर वातावरण में देह भान से मुक्त रह सकते हैं, नाचते रह सकते हैं, उड़ते रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने समान में, कैसे? जैसे हम नेचुरल देह भान में रहते हैं 63 जन्म से, तो आपको देह भान को याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ती। आपको देह और देह से संबंधित चीजें सपने में भी याद रहती है। इसी प्रकार से अगर हम अपने ज्ञान के समान में, योग के समान में, धारणा के समान में, सेवा के समान में रहेंगे तो आपको देह याद आएगी? नहीं। एक राजा राजा बन गया, अब वो राजा राज सिंहासन पर बैठता है तो राजा को राजा याद आएगा या देह याद आएगी अपनी? राजा याद आएगा। एक डॉक्टर डॉक्टर बन के हॉस्पिटल में दवाई दे रहा है, उसको अपना डॉक्टर का सम्मान रहता है या देह का सम्मान रहता है? अगर उसको बहुत ज्यादा मरीज आ जाए, दवाइयां देनी पड़े, वो खाना भी नहीं खाता क्योंकि उसको देह का भान है ही नहीं, उसका ध्यान लगा हुआ है। अगर कोई जेल में कैदी भी बन जाए तो उसके बाद उसको अपना देह याद आता है या ये आता कि मैं कैदी हूं? तो कैदी याद आएगा ना। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि अगर हम अपने समानों में चारों सब्जेक्ट के स्थित रहें, आपको देह भान आ ही नहीं सकता। कितनी शानदार बात है। सिर्फ उन चारों सब्जेक्ट के समानों को इकट्ठा करके हर वक्त मन में रखना है तो आपको रात का पता नहीं लगेगा, दिन का पता नहीं लगेगा, गर्मी का पता नहीं लगेगा, सर्दी का पता नहीं लगेगा, आलस नहीं आएगा, सुबह 3 बजे हैं या 12 बजे हैं या 4 बजे हैं। आप अपने समान में रहेंगे, अब बिल्कुल ठंडे पानी से भी नहालेंगे आपको फील नहीं होगा। ये हमने अनुभव किया हुआ है। जो ही देह भान में आएंगे आपको सब चीजें आ जाएंगी। मान लो रात के 12 बजे तक पिछली रात आप कुछ सेवा करते रहे, सो गए, अब सुबह आपकी आंख कितने बजे खुलेगी? क्या ख्याल है? जितने बजे रोज खुलती है उतने बजे खुलेगी, या क्योंकि आप रात को 12 बजे सोएगी तो लेट खुलेगी? नहीं, जितने बजे रोज उठते उतने बजे खुलेगी, क्योंकि अभ्यास है। आप सो नहीं सकते ज्यादा, लेकिन आंख खुलने के बाद जब आपको याद आएगा, अरे मैं तो रात के 12 बजे सोया था, मैं थका हुआ हूं, आप थक जाओगे। इसलिए बाबा कहता है कि जो कहा गया है कि गर्मी सर्दी हानि लाभ उस्तर निंदा मान अपमान से ऊपर रहो, उसका यही तरीका है कि देह मानना है। तो फरिश्ता जो होता है उसको कभी फील होता है मैं थक गया? नहीं, क्योंकि वो देह भान में नहीं होता। तो इसलिए एक तो बाबा कहते हैं वैसे ही फरिश्ते का अभ्यास करो और एक स्वमान में रहो। तो ये खास बात नोट करने की है, क्योंकि आगे चलकर मुरली में बाबा ने इसका तरीका बताया। क्या कह रहे हैं बाबा? कह रहे हैं कि जहां स्वमान है वहां देह भान नहीं आ सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करोगे तो एक एक स्वमान की माला फेरते जाओगे तो अनेक स्वमान स्वरूप बनकर समान में लवलीन हो जाएंगे, आपको देह भान नहीं आएगा। मान लो हमारी सभा में से दादी जानकी जी को 3 बच्चों को प्राइज दे रहे हैं जो क्लास में सबसे पहले आए थे, मान लो, और यहाँ दादी जी आके कहते हैं कि ये 3 जो है उनके नाम बोलते हैं, आप स्टेज पर आ जाओ। तो आप जो जिनके नाम लिए जाएंगे उनको देह भान आएगा? नहीं आएगा। वो खुशी खुशी जाएंगे कि हमें यहां दादी जी हमें प्राइज देने वाली है। अगर किसी दूसरे को कहो स्टेज पर आ जाओ तो उसको देह भान आएगा, चलते हुए लगेगा उसमें सीढ़ी चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि देह भान में है। तो जो ही स्वमान मिला देह भान खत्म। इसीलिए बाबा कह रहे हैं लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती कि इतने सम्मान दिए हैं, एक भी सम्मान में खो जाएंगे तो आप देह को भूल जाएंगे। आप सबको अनुभव है, जिस वक्त बाबा आपकी रस्सी खींचता है या कोई खास आपको अनुभव होता है, आपको देह भान नहीं रहता। आप योग भट्टी करके बाहर निकलो, गेट पर खड़े हुआ देखेगा कि इसका चेहरा चमक रहा है। रोज नहीं चमकता, क्योंकि कुछ प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं इतने मैंने सम्मान दिए, अरे ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ पहले तो कहा, बाप दादा को फिर ये अच्छा नहीं लगता कि बच्चे कहते हैं, कौन सी बात कहते हैं कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है। अपने ही स्वमान में स्थित होने में मेहनत लगती है, अर्थात हम अपने स्वमान में नेचुरल नहीं रहते, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है। तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत को देख नहीं सकते, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती, और जहां मेहनत है वहां मोहब्बत की कमी है। माँ को बच्चे से मोहब्बत होती है, बच्चा भूखा हो तो माँ खा नहीं सकती जब तक बच्चा नहीं खाएगा। बाप तो ऑलमाइटी है, कहते हैं मेरे सर्वशक्तिवान के बच्चे, इतना रोज उनको सम्मान देता हूं फिर वो कहे मैं सम्मान में स्थित होने में मेहनत लगती है, तो मोहब्बत नहीं है। तो आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा। हर सेंटर पे एक चित्र लगा होता है। बाबा कहता है चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। उस चित्र को देखकर जब हम देखते हैं नीचे लिखा हो बाबा ने मैं हूं ना, तो सब चिंता गायब हो जाती कि बाबा तो है ना। तो बाबा कहते हैं चित्र को देखकर नहीं, हर वक्त ये समझे कि हमारा बाबा हमारे साथ है। तो बाबा ने क्या देखा, कोई कोई बच्चे सोमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तखत नशीन हूं, सोच भी रहे हैं, सोमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी। जब बैठते हैं तो याद तो करते हैं ना, मैं दिल तखत नशीन हूं। कमी क्या देखी, सुमान याद है, सोच रहे हैं कि मैं दिल तखत नशीन हूं। कमी है स्वरूप बनकर, अनुभवी मूर्त बनकर, अनुभव की अथॉरिटी स्वरूप में बनने की कमी है। सोचना, स्मृति में लाना, बैठना ठीक है, लेकिन उसके अनुभव नहीं होता। बाबा कहते हैं क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी होती है, और ये सुमान की अनुभूति ऑल माइटी अथॉरिटी ने दी। हम सबको अपने सुमान जो दिए हैं ऑल माइटी ने दिए हुए, किसी ऐसे ने नहीं दिए हुए टाइटल, किसी मनुष्य ने दिए हुए हैं, ऑल माइटी ने दिए हुए हैं, उसकी अनुभूति तो नेचुरल रहनी चाहिए। तो हर बच्चा मेहनत कर रहा है, सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है, और जो अलमाइटी ने स्वयं दी है, मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है या कभी कभी है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपनी तरफ नहीं खींच सकता। ये बाबा ने दूसरी बार कहा है कि अगर आप अनुभव स्वरूप बन जाएंगे तो देह अभिमान आपका आ ही नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। हैं कर्म योगी हैं, जब भंडारे में जाके भोजन बनाते हैं या सब्जी काटते हैं या बाबा की कोई भी ड्यूटी करते हैं, उस समय देह भान कम होता। लेकिन ऐसे अनुभवी बन जाए, सदा कुछ भी काम करते रहें, देह भान हो ही ना, तो हो गए अलमाइटी के बच्चे। तो स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। बाबा कहते हैं अनुभवी को माया भी नहीं हिला सकती, क्योंकि देहवानी नहीं रहेगा। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभव स्वरूप में देखना चाहते हैं। इस मुरली का मेन लक्ष्य क्या है, बाबा हम सब बच्चों को अनुभव स्वरूप बनाना चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, उससे क्या होगा, जो सोचा, जिस सुमान में स्थित रहना चाहा, उसके अनुभव में स्थित हो जाए। वरना सोचेंगे कुछ हो कर नहीं पाएंगे। मान लो सोचा मैं परम धाम में जाऊं, तो आप परम धाम में जाने की बजाय कहां पहुंच जाएंगे, हाँ, राजस्थान में अपने घर में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ भाई, क्योंकि सोचने और करने में फर्क है। अगर अनुभव स्वरूप है तो आप कहीं भी घूमते रहे, चाहे वो लौकिक घर में रहे, चाहे रास्ते में हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, आपको वो अनुभूति नहीं जा सकती। उसका तरीका बाबा आज बता रहे हैं। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देह अभिमान जहाँ स्वमान स्वरूप हैं, स्वमान के अनुभूति में स्थित हैं, वहाँ देह भान नहीं आ सकता। ये नोट कर लें। जैसे देखो अंधकार है तो हो भी गया, मान लो आपने अमृत वेले स्नान करके योग में आना है। अगर आप योग युक्त हैं, योग की अनुभूति में हैं, उठे तब भी योग में थे, तो आपको स्नान करना इजी लगेगा, क्योंकि आप योगी हैं और योग में जाके बैठने वाले हैं, प्रधानता योग की है। अदरवाइज अगर आपने सोचा मैं स्नान करके योग में जाना है, तो स्नान प्रधान हो जाएगा, फिर आपको लगेगा ठंडा गर्म है कि नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को लगन होती है ना, आपको कहीं जल्दी जाना हो, आप जूता भी नहीं पहनते। मान लो कोई कहते इस डायमंड हॉल में बहुत बड़ा सांप है और सबकी सीटों के नीचे घूम रहा है, जल्दी से बाहर निकल जाओ, तो आप जूते का ख्याल करोगे क्या? पर्स भी छोड़ के भागोगे, उस वक्त देह भान नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है कि वो नेगेटिव है, डर के मारे है, प्रेम के बारे में ऐसा होता है। जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन कर दो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब स्वमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है, तो किसी भी प्रकार का देह भान, भिन्न भिन्न प्रकार के देह भान भी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप के स्वमान भी हैं। स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, इसमें अंतर है तो मेहनत करनी पड़ती है। एक है अनुभव का पुरुषार्थ करना कि मेरे को अनुभव हो, और एक है अनुभवी स्वरूप बनना, अनुभव हो जाए, तो फर्क है ना। तो अनुभव हो जाए उसके लिए मेहनत करते हैं। तो बाप दादा को अब समय के प्रमाण समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने का समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी तो समान बनना है, तो मेहनत वाला कैसे बनेगा। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूँ, और जीवन नेचुरल और सदा काल की होती है, कभी कभी की नहीं। कोई कहे कभी कभी मैं कर्म योगी बनता हूँ, कभी कभी मुझे योग का अनुभव होता है, कभी कभी मुझे दैवी गुणों का अच्छा अनुभव होता है, तो जीवन कभी कभी का नहीं होता। ऐसे अनुभव स्वरूप बनो जो लक्ष्य है योगी जीवन का, तो लक्षण है अनुभवी मूर्त बनने का। वह लक्ष्य संपन्न है कि मैं अनुभवी हूँ योगी जीवन का। सदा मस्तक से, अब देखिए बाबा ने निशानी बताई है, सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद ही उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं हो लेकिन स्मृति स्वरूप हो, और स्मृति स्वरूप है या नहीं। अब बाबा कहता है हो तो सही, अब इसकी निशानी क्या है। अब जिस जिसको नींद आ रही है, नींद में भी स्मृति स्वरूप होते हैं, है ना, ऐसी मस्ती आती है कि वाह, इसका अनुभव तो इतना प्यारा लगता है कि बाबा कहते हैं कि कान सुन भी रहे हैं लेकिन और झूम रहे हैं। आपका दोष नहीं है, टाइम ही ऐसा है। तो जरा प्लीज थोड़ा सा कुंभकर्ण के युगल को ना आने दो। कुंभकर्ण की युगल कौन थी पता है? कुंभकर्ण की युगल थी निंद्रा देवी। तो जब कुंभकर्ण मारा गया तो तो निंद्रा देवी को सारे समाज ने कहा तुम विधवा हो गई हो, घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो कुंभकर्ण की युगल शाम को दुकाने पे शॉपिंग करने जाती थी, डांस करने जाती थी। तो एक साल हो गया तो उदास हो गई, बिल्कुल चुप हो गई, जैसे उसमें प्राणी नहीं, जैसे भरा अधमरा सांप होता है। तो समाज ने कहा बेचारी पे कोई तरस करो, विधवा है तो ठीक है, कहीं तो जाने दो। तो उन्होंने कहा इसको सत्संग में जाना अलाउड है, जहां भगवान का नाम लिया जाएगा वहां जाके बैठे। इसलिए निंद्रा देवी आपको कहीं नहीं आएगी, कल्चरल प्रोग्राम में नहीं आएगी, भोजन में नहीं आएगी, लेकिन जब आप क्लास में बैठेंगे उसको अलाउड है कि तुम भी जाओ, इसलिए वो आ जाएगी। तो ध्यान रखना, निंद्रा देवी को मत आने देना। तो इसलिए उसको को अलग से कोर्स कर जाके, हमारे बीच में मत आओ। इसलिए बाबा ने अब ये बताया है कि हम स्मृति स्वरूप हैं या नहीं, उसका प्रमाण क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चेक कर सकते हैं कि हम स्मृति स्वरूप हैं या नहीं। ये शब्द जो बाबा कहने वाला है, बाबा 18 जनवरी को भी कहता है, कई जगह कहता है। बाबा कहते हैं उसका प्रमाण है कि जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप हैं, वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए अनुभव करेंगे। तो अनुभवी स्वरूप कभी भी समर्थी नहीं खोएगा, वो थकेगा नहीं, उसको किसी भी कार्य में, जैसे बाबा कहता है उमंग उत्साह में रहो, ब्रह्मा बाबा खुद हर समय उमंग उत्साह में हर कार्य में रहते थे, इस तरह होगा। कार्य भिन्न भिन्न होंगे लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो सकती, वो हर कार्य को समर्थी स्वरूप होके करेगा। तो आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है, अनुभव स्वरूप बनने में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार देखा, बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत नहीं देखी जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, बाबा कहते हैं कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है, हाँ कभी कभी, इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी हैं लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। अब सुनिए, एक सेकंड में चार ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। हर सेकंड में चारों सब्जेक्ट में जो स्वमान है, जो प्राप्ति है, उसके अनुभवी की अनुभूति होनी चाहिए, तो देह अभिमान नजदीक भी नहीं आ सकेगा। तो देह अभिमान को छोड़ने का यह तरीका है, जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, उसको निकालना नहीं पड़ता, लेकिन जहां अंधकार है वहां रोशनी कम है या नहीं है, तो सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव की गाई हुई है। कहा जाता है जहां न पहुंचे कवि, है ना, वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव को हजारों लोग बदलना चाहें तो बदल नहीं सकते। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की है, योग की है, धारणा की है, सेवा की है, किसी में भी चार में से एक में भी मेहनत लगती है अगर, तो जरूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में, अब हर एक की बाबा बता रहे हैं, सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार के परिवर्तन में, योग में भी अचल रहने की अवस्था में, योगी जीवन की अनुभूति करने में, जहां मेहनत लगती है या कभी कभी कहते हो, तो इसका अर्थ है इस सब्जेक्ट के आप अनुभवी मुहूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर हो जाती है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या है, आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन के अनुभव करते हो, उस समय आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरल अनुभूति होती है। सबको अनुभव है, कभी ना कभी जब बाबा आपकी रस्सी खींचता है, आपको शरीर का महसूस भी नहीं होता, दिल भी नहीं करता वापस शरीर में आए। इसलिए अभी समय प्रमाण सब कुछ अचानक होना है, ऐसे नहीं कि हम हर बारी डायमंड हॉल में आके आराम से बैठ के मुरली मंथन करेंगे। बाबा टाइम बता रहा है, बाबा कहते हैं सब कुछ अचानक होना है, बता के नहीं होना है। और ये तो बाबा ने सबको ने सुना होगा, बड़ी अच्छी बात कही है, इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है, हैं? ठीक है ना, जब औरों की कट रही है तो हमारी भी कटेगी या नहीं? या हम सोचते हैं औरों की कट जाएगी हमारी नहीं कटेगी? तो ऐसे समय के लिए आप एवर रेडी हो, ये तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या समान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत करके वरदान या समान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बाबा कहता बनना ही पड़ेगा, कोशिश कर रहा हूं ये कहते हो, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से करो, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास मदद करेगा। पुरुषार्थ नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑल माइटी अथॉरिटी ने दी है। दुनिया में तो कोई अनुभव भी नहीं कर सकता, उनको परिचय नहीं है, शक्ति नहीं है, बच्चों को बाबा ने अथॉरिटी दी है। जैसे देह भान के अनुभवी हैं, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? तो देह भान इतना पक्का हो गया। ऐसे ही देही अभिमानी सोमानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देह भान से सोमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो कि ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं। ज्ञान अर्थात नॉलेज। अब सुनिए ज्ञान का समान क्या है, तो नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप क्या है? नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान का समान स्वरूप क्या है? लाइट और माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, अर्थात यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना, यानी वो कर्म आपको हल्का बनाएगा और शक्तिशाली बनाएगा। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। ये तो हो गया ज्ञान का समान कि लाइट और माइट। योग स्वरूप का अर्थ है कर्म इंद्रियों को जीत बनना। तो योग का समान क्या है? हम अपने कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल से चलाएं। हर कर्म इंद्रियों पर स्वराज्य अधिकारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है, अब बाबा कहते हैं अगर ये दो को आप कर लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक होंगे। ऐसे अगर ज्ञान और योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान है योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा भी हर समय ऑटोमेटिकली होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्मना करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। तो ज्ञान योग के समान में स्थित हो जाएं, तो गुण भी आ जाएंगे और सेवा हर समय चलेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। अब बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि मानो कोई अपने भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, क्योंकि इस वक्त संस्कार के वश है। ऐसे संपर्क वाली आत्मा को अपने आप ने उमंग सा दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, तो ये भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना ये पुण्य कहा जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना ये सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, कि केवल वो सेवा नहीं है। सेवा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा है, संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है, इसका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वो नहीं है, देखते भी हैं, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलता ही नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प करना यथार्थ नहीं है। जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, तभी तो आपको सतयुग में सतो प्रधान शरीर मिलेगा। प्रकृति को, और वो तो मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कार के वश है। तो जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है, तो वो तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। ये तो है ही ऐसा, ये बदल नहीं सकता, ये शुभ भावना नहीं है। बाबा ने कहा ये सूक्ष्म में घृणा भावना, तो जो घृणा भावना रखेगा वो स्नेह की भावना कैसे रखेगा। फिर भी आपका भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना, तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य आत्मा बनेगा, पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं है, उठाना है, सहयोग देना है, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो कि इतना सेवा का उमंग है, इसको कहा जाता है अनुभव की अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। तो चार ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन के अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाएगा, जो कमी हो उसको संपन्न करेगा, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वो हाथ उठाओ। अब बाबा कहता है जो अटेंशन देंगे, कल कहा था, आज तक तो हिम्मत है ना उठाने की, तो जरा अपना दायां हाथ उठाइए, तो बाबा शक्ति भी देगा। अगर हाथ ही नहीं उठाएंगे, लॉटरी का टिकट ही नहीं लेंगे, तो लॉटरी कैसे निकलेगी। एक बहन नहीं उठा रही है, शाल के अंदर हाथ इतना टाइट किया हुआ है कि बस आपकी मर्जी, अंदर ही उठा दो, चलो शाल के। इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वो हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि शिव बाप दादा शिवरात्रि पर आपका रिजल्ट देखेंगे। मन में कोई की भी कमी का संस्कार हो, अपनी शुभ भावना को कम नहीं करना। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना पावरफुल है क्या जो आपकी शुभ भावना को कम कर दे। उसके लिए आपकी शुभ भावना पावरफुल होनी चाहिए। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं किया, क्या नहीं देखा, जिम्मेवार होते हुए फिर भी सब कुछ देखते करते कि ये ढीला है, ये ऐसा है, इतना कर, फिर भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के तीन शब्द सभी को शिक्षा में देखे गए। याद है ना तीन शब्द, स्वयं भी निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। इसी स्थिति में अव्यक्त बने, किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसी ने समझा था क्या इनका कर्म भोग समाप्त हो रहा है, क्या हो गया, अव्यक्त बन गए बात करते करते। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, तो फॉलो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाप से प्यार रहा। अभी भी चाहे साकार में कईयों ने नहीं देखा, लेकिन व्यक्त बाप के रूप में भी स्नेह सबका है, क्योंकि व्यक्त बाप दादा हमें व्यक्त मुरलियों के द्वारा 1969 18 जनवरी से अब तक पालना दे रहे हैं। बाप दादा दोनों से स्नेह है। देखा गया है कि स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी बच्चे पास हैं, स्नेह ही चला रहा है। चाहे धारणा नहीं भी हो, किसी भी सब्जेक्ट में कमी भी हो, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी सभी पास हैं, स्नेह चला रहा है। आप सभी क्यों आए हो, किस विमान में आए हो यहाँ? तो स्नेह के विमान में पहुंचे हो ना, तो बाप दादा का भी लास्ट बच्चे से भी प्यार है, कैसा भी है लेकिन प्यार में पास है, क्योंकि बाप का हर बच्चे के प्रति दिल का प्यार है, क्योंकि चाहे कैसा भी है मेरा है। जैसे माँ बाप का बच्चा कैसा भी हो लौकिक में, तो मेरा है। तो जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं, मेरे बच्चे। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होनी चाहिए। अब बाबा ने आपस में हमारी भावना को कहा, स्वभाव नहीं देखो। बाप दादा जानते हैं कि भाव स्वभाव हैं, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करें, संबंध को खत्म नहीं करें, कार्य को सफल कम करें, ये राइट नहीं है। ये बाबा का जो सेवा का कार्य है, भाव स्वभाव के कारण हम उसमें सहयोग कम दें या ना दें। परिवार है, और कौन सा परिवार है, प्रभु परिवार है, तो परमात्म परिवार है। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में भी दिखाते हैं, कौरव पांडव आपस में लड़ते थे, शाम को इकट्ठे होकर बैठते थे, वो तो कथा सुनाते हैं। ऐसे है प्यार की कमी, प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो। तो प्यार का स्वरूप क्या है, शुभ भावना रखें। कैसा भी है परमात्म परिवार है, अपना सहयोग उसको देना बंद नहीं करें। तो जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूँ, तो परिवार का अर्थ ही होता है प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं है तो परिवार नहीं है। इसलिए आज क्या पाठ पढ़ा, क्या पाठ पक्का किया, हर आत्मा से शुभ भावना और शुभ भाव रखना, ये तो ठीक है। हम सबको हर आत्मा से शुभ भाव और शुभ भावना रखनी है। जो कम से कम इतना पाठ बाबा का पढ़ा, वो दाया हाथ उठाओ। हर एक आत्मा से उसका भाव स्वभाव नहीं देखना, शुभ भाव और शुभ भावना रखनी है। हम ईश्वरी परिवार के हैं, ये परमात्म परिवार एक का और एक ही समय होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसी का हो नहीं सकता, यह ईश्वरी परिवार। तो चेक करना, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है, तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी मूर्त बन सकेंगे, और अनुभव की अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी मूर्त बना सकेंगे। ओम शांति। तो ठीक है, खास बाबा ने क्या कहा कि ज्ञान की सब्जेक्ट से लाइट और माइट हमको मिलती है, तो जो भी कर्म करें वो यथार्थ है या नहीं ये देखें। इस कर्म ने मुझे हल्का किया, बोझ में तो नहीं डाला, और इससे मुझको शक्ति मेरी बढ़ी। और योग की सब्जेक्ट से हम इंद्रिय जीत बनते हैं, हर एक इंद्रिय पर कंट्रोल होता है। इन दोनों सब्जेक्ट के अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे तो दैवी गुण आप ही धारण होंगे और सेवा अपने आप होगी। ये अच्छी तरह नोट करके अपने जीवन में लाके अनुभव की अथॉरिटी बन के चलेंगे। जैसे माँ होती है, माँ को पता है कि मैं माँ हूँ, तो उस अनुभव से बच्चों की पालना करती है। कोई माँ नहीं होगी, नर्स होगी या चाची मामी होगी, उस तरह नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अनुभव की अथॉरिटी नहीं है। तो हर व्यक्ति देवभान में अभी आ गए हैं तो देवभान के अनुभव की अथॉरिटी नेचुरल हो गई। तो बाबा कहते हैं इसकी बजाय ज्ञान योग धारणा सेवा के द्वारा अपने अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी बनके हमको जीना है। ओम शांति।